ओम शांति, ओम शांति। आज रविवार है और हम सभी अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे। 2011 की मुरलियां चल रही है। पिछले रविवार को हमने शिव जयंती की मुरली सुनी और आज होली की मुरली है। होली का आध्यात्मिक रहस्य क्या है वो बाबा ने आज स्पष्ट किया है। बहुत सुंदर महावाक्य है होली के, होली पर क्या क्या करते हैं और उनका आध्यात्मिक रहस्य क्या है वो आज बाबा ने बताया। होली पर जलाते भी हैं, मनाते भी हैं, तो जलाना कौन सा, मनाना कौन सा, रंग कौन सा, बहुत कुछ आज की मुरली में है। और ये 2011 में जापान में बहुत बड़ा भूकंप आया था, मुझे भी याद है, वो इतना जबरदस्त भूकंप था, वो सागर के नीचे था, जिसके कारण बहुत बड़ी सुनामी आई थी। इतनी जबरदस्त सुनामी थी, जो भी सागर के किनारे मकान थे, जमीन थी, वो सब नष्ट हो गई थी और बहुत लोग मरे थे। और केवल उतना ही नहीं हुआ था, और सागर के किनारे इनके ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स थे जापान के, जहां से बिजली का उत्पादन होता था, उनको आग लग गई। इतनी आग लगी, इतनी भयंकर आग लगी कि ये डर था कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उनमें से जो रेडियो एक्टिविटी निकलेगी, अगर हवा चली बहुत तो रेडियो एक्टिविटी जो फैलेगी वो चारों ओर जाएगी, ये भी डर था। और फिर अगर बारिश हुई फिर तो सागर में चली जाएगी रेडियो एक्टिविटी, तो सारा पानी दूषित हो जाएगा, इतना डर था उस समय, मुझे याद है। तो ड्रामा अनुसार तीन तत्वों ने काम किया, दोनों जो चौथा और पांचवा था वो उसने काम नहीं किया। अगर वो भी करता, पांचों ही तत्व काम करते तो भयंकर विनाश होता। लेकिन कौन से तीन तत्वों ने काम किया? धरती ने काम किया, जल ने काम किया और अग्नि ने काम किया, बाकी था वायु और आकाश। तो बारिश भी नहीं हुई और आंधी तूफान भी नहीं आया, लेकिन तीन तत्वों ने तो काम किया। और इतना जबरदस्त वो सदमा था सारे जापान में, जो मात मत पूछो। हमारे कई सेंटर्स हैं जापान में, बाबा के कई घर हैं, बाबा के कई बच्चे हैं जापान में, लेकिन सब बच्चे बाबा के सुरक्षित रहे। तो ये भी एक बाबा ने कैसे कमाल की, जो बाबा के बच्चों को कुछ भी नहीं हुआ, तो उस समय की बहुत बड़ी न्यूज थी। और बाबा ने उसका वर्णन मुरली में किया है कि ये तो अभी शुरुआत है, तो तत्व भी तमो प्रधान हो गए हैं, तो ये पांचों तत्व कितना कहर मचा सकते हैं जिससे विनाश होगा। लेकिन फिर तो जापान तो बहुत धनी देश है, तो फट से वो तैयार हो गया। फिर से देखो अभी तो जापान बहुत आगे जा रहा है और बाबा के सेंटर्स भी बहुत खुले हैं। हिरोशिमा नागासाकी जहाँ बॉम्ब गिराया था 1945 में, वहाँ भी अभी बाबा के सेंटर है। और उस समय जो बॉम्ब गिराया था वो इतना बड़ा खड्डा बन गया है वहाँ, उस वहाँ म्यूजियम भी है। तो वो जो नजारा था उस समय का और अभी जो हिरोशिमा नागासाकी है, रात दिन का फर्क है, बहुत सुंदर हो गया। तो ये तो है, लेकिन बाबा कहते जब विनाश होगा तो कितना नुकसान होगा, सारी दुनिया पर उसका असर होगा, वो तो बाबा इशारा देते ही रहते हैं। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य आज 16/8/2026 है और ये मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं 16/3/2011 की। हेडिंग है मनसा द्वारा प्रकृति को सतोगुणी बनाने की सेवा करो। क्या करो? बाबा ने कार्य दिया है मनसा द्वारा प्रकृति को सतोगुणी बनाने की सेवा करो। कैसे करेंगे सेवा? शुभ भावना, शुभ कामना रख, संस्कार मिलन की रास करो। तो प्रकृति की भी सेवा करो, उसको सतो प्रधान बनाने की सेवा करो मनसा सेवा द्वारा, और आत्माओं की सेवा कैसे करो? शुभ भावना, शुभ कामना रख, संस्कार मिलन की रास करो। संस्कार मिलन हो, होली पर मिलते हैं ना आपस में, खूब गले लगाते हैं, खूब गले लगाते हैं और एक दो को मिठाई खिलाते हैं और कहते हैं और रंग डालते और कहते हैं होली, हाँ आज के दिन बुरा मत मानो, आज सब हम एक है, ऐसे छोटे बड़े सब एक हो जाते हैं और रंग डालते हैं। तो बाबा ने कहा शुभ भावना, शुभ कामना रख, संस्कार मिलन की रास करो। आज होलीएस्ट बाप अपने बच्चों से होली मनाने आए हैं। आप सभी भी होली मनाने आए हो। बाबा होली खेलते थे, बाबा को पिचकारी देते थे और बाबा पिचकारी लगाते थे, बच्चों के ऊपर रंग भी पड़ता था, बाबा को भी डालते थे, लेकिन वो तो छोटा छोटा, लेकिन बाबा भी खेलते थे। आप सभी भी होली मनाने आए हो। चारों ओर के दूर बैठे हुए बच्चे भी, उस समय वीडियो द्वारा ये इंटरनेट के माध्यम से सारी दुनिया में बाबा के बच्चे देखते थे, तो चारों ओर के दूर बैठे हुए बच्चे भी, दूर बैठे भी होली मनाने बैठे हैं। आप सभी कौन से रंग की होली मनाने आए हो? कौन सा है हमारा रंग? वो लाल पीला रंग नहीं, हमारा कौन सा रंग है? परमात्म संग का रंग। आप सभी कौन से रंग की होली मनाने आए हो? जानते हैं ना, सबसे श्रेष्ठ रंग है परमात्म संग का रंग। कौन सा रंग सबसे श्रेष्ठ है? परमात्म संग का रंग, सबसे श्रेष्ठ रंग। ये रंग सदा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनाने वाला भी है। श्रेष्ठ रंग भी है और श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनाने वाला भी है परमात्म संग का रंग। जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा है, ऐसे ये परमात्म संग ऊंचे ते ऊंचा बनाने वाला भी है। हरेक बच्चे के मस्तक में, अब देखो अपने आप को, बाबा जैसे देख रहे हैं बच्चों को, हम अपने आप को देखें। हरेक बच्चे के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा देख रहे हैं। देखो अपने मस्तक पर भाग्य का सितारा चमक रहा है। ये भाग्य का सितारा सारे कल्प में आप भाग्यशाली बच्चों के सिवाय और कोई प्राप्त नहीं कर सकता। वो श्रेष्ठ भाग्य है, कौन सा श्रेष्ठ भाग्य है हमारा, कि आप बच्चे ही डबल पवित्र अर्थात होली बनते हो। डबल पवित्र, डबल पवित्र माना आत्मा भी पवित्र तो शरीर भी पवित्र मिलता है ना सतयुग में। आप बच्चे ही डबल पवित्र अर्थात होली बनते हो। वैसे धर्मात्मा ही तो है, लेकिन वो शरीर से पवित्र नहीं बनते हैं। भले वो आत्मा उनकी पवित्र बनती है, पवित्र रहते हैं, लेकिन शरीर तो फिर भी सबका पति थी है। वो शरीर से पवित्र नहीं बनते हैं। आप ब्राह्मण आत्माओं की भविष्य में आत्मा भी पवित्र बनती है और शरीर भी पवित्र बनता है। इनकी निशानी क्या है? इनकी निशानी डबल पवित्र, तो डबल ताज प्राप्त होता है। शरीर भी पवित्र, आत्मा भी पवित्र, तो आत्मा की पवित्रता का ताज है लाइट का ताज, और शरीर की पवित्रता माना इतनी ऊंची उनकी तकदीर है, तो उसका फल है रतन जड़ित ताज। तो इनकी निशानी डबल पवित्र, तो डबल ताज प्राप्त होता है। सारे कल्प में आप संगम युग पर बाप के संग के रंग में डबल पवित्र डबल ताजधारी बनते हो। कैसे बनते हैं डबल ताजधारी? बाप के संग के रंग में। संगम युग का परमात्म संग डबल पवित्र बना देता है। तो आप होली बाप के साथ, परमात्मा तो परम पवित्र है, तो उनके साथ आप होली बाप के साथ रहने से, बाप को कंबाइंड बनाने से, बाप का संग का रंग लगा तो कंबाइंड हो गए, तो बाप को कंबाइंड बनाने से डबल पवित्र बन जाते हो। सदा दिल में बाप का संग रहता है। ये संग, बाप का संग कितना श्रेष्ठ है, कितना श्रेष्ठ है, जो इतना श्रेष्ठ बना देता है। संग तो श्रेष्ठ है, पर कितना ये श्रेष्ठ बना देता है परमात्म संग। लोग तो स्थूल रंग से होली मनाते हैं, लेकिन आप बाप के संग के रंग से होली बन जाते हो। खाली होली के रंग लगाते नहीं, लेकिन बाप के संग के जो होली के रंग से होली बन जाते हो। ये भी वो भी डबल होली, डबल होली बनते हो। शरीर भी होली, आत्मा भी होली, डबल होली। तो आपकी होली दुनिया से न्यारी, परमात्मा की प्यारी है। कैसी हमारी होली? हाँ, बाबा कहते हैं आपकी होली दुनिया से न्यारी, परमात्मा की प्यारी है। तो नशा रहता है ना कि हमारी होली प्रभु संग के रंग के कारण आधा कल्प ऐसा पवित्र बनाती है। ये होली ऐसा पवित्र बनाती है प्रभु संग के रंग के कारण, जो अब तक भी आपके चित्र कायदे प्रमाण पूजे जाते हैं। इतने पवित्र बन जाते हैं जो हमारे चित्र भी कायदे प्रमाण पूजे जाते हैं, और कोई के भी चित्र ऐसे प्रेम पूर्वक पूजे नहीं जाते हैं। आप स्वयं अपने चित्रों को देख रहे हो। मंदिरों में जाते हैं, लक्ष्मी नारायण के चित्र को, राधे कृष्ण के चित्र को, कई देवी देवताओं के चित्र को देखते हैं, तो क्या महसूस होता है कि ये हमारे ही चित्र हैं। तो बाबा कहते हैं, और आप स्वयं अपने चित्रों को देख रहे हो और भी पूजे जाते हैं। हाँ, दूसरे धर्म वाली आत्मा उनकी भी तो कुछ न कुछ रूप से पूजा होती है, और भी कई पूजे जाते हैं, लेकिन इतना समय और ऐसे विधि पूर्वक पूजा नहीं होती है उनकी। आप सदा उमंग उत्साह में रहते हो। ये दूसरी बात, पहले रंग की बात सुनाई, अभी उमंग उत्साह में रहते हो होली पर। आप सदा उमंग और उत्साह में रहते हो ना उमंग उत्साह में। उमंग उत्साह में रहते हो? बाबा ने पूछा। हाथ उठाओ जो सदा उमंग उत्साह में रहते हैं। हाँ, सदा उमंग उत्साह में रहते हैं। रहते हो कभी कभी या सदा? अब ये दोनों प्रश्न है। हाँ, ये प्रश्न आता है ना, बाबा पहले पूछेंगे रहते हो, फिर दूसरा प्रश्न क्या पूछते हैं, कभी कभी या सदा? जो कहते हैं हम सदा उमंग उत्साह में रहते भी हैं और दूसरों को भी उमंग उत्साह दिलाते हैं, केवल खुद नहीं रहते दूसरों को भी दिलाते हैं, वो हाथ उठाओ। सदा ही रहते हैं और उमंग उत्साह से, हाँ उमंग उत्साह सबको दिलाते भी। अब इसमें सब नहीं हाथ उठा रहे हैं, हाँ? थोड़े कम। कभी कभी नहीं, सदा। सदा शब्द को अंडरलाइन करते हो ना, लेकिन आपका यादगार, अब अपना यादगार देखो, आपका यादगार जो भी आपकी स्थिति रही है उसका यादगार आपके भक्त उत्सव के रूप में मनाते हैं। आपने प्रभु के संग का रंग लगाया तो भक्त लोग क्या करते हैं? तो भक्त लोग रंग तो लगाते हैं, लेकिन बॉडी कॉन्शियसनेस है ना, देह अभिमानी है, तो स्थूल रंग लगाते तो है ना, तो स्थूल रंग लगा देते हैं। तो देह अभिमानी है तो वो सूक्ष्म आप पर प्रभु परमात्म संघ का रंग तो वो नहीं लगा पाते हैं, तो स्थूल रंग लगाते हैं। जिस रंग में क्या होता है, वो जो रंग लगाते हैं जिस रंग में खर्चा भी बहुत, अब गुलाल है या जो भी रंग लेते हैं वो खर्चा तो करते होंगे ना, पैसा तो देते होंगे, तो जिस रंग में खर्चा भी बहुत और फिर रिजल्ट भी कुछ अच्छी कुछ अच्छी नहीं भी है ना। कई बार किसको रंग लगाते उनको बहुत बुरा लगता है, ये क्या तुमने कर दिया, मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए। और कईयों को तो बहुत अच्छा लगता है, और लगाओ और लगाओ, तो कईयों को तो खुशी होती है और कई तो नाराज हो जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कुछ अच्छा, जिस रंग में खर्चा भी बहुत है और फिर रिजल्ट भी कुछ अच्छी कुछ नहीं अच्छी, कोई नाराज भी हो जाते हैं, ऐसे मनाते हैं। लेकिन आपके उत्साह का यादगार उत्सव जरूर मनाया है, अपने ढंग से मनाते हैं वो उस उत्सव का, वो उत्साह का उत्सव। आप परमात्मा के बनने के लिए पहले क्या करते हो? अब होली पर पहले जलाना होता है, तो आप परमात्मा का बनने के लिए पहले अपने पुराने संस्कारों को जलाते हो और फिर प्रभु के संग का रंग लगने से सदा मनाते रहते हो। तो पुराने संस्कारों को जलाते हैं पहले होली या होलिका मनाते हैं, पुराना सब जल गया, सब पूरा होली पर क्या करते हैं, जलाने की जो होली होती है उसमें पुरानी पुरानी लकड़ी ये सब जो कुछ भी पुराना है सब उसमें डालते हैं और वो पुराना सब जला देते हैं। तो अपने पुराने संस्कारों को जलाते हो और फिर प्रभु के संग का रंग लगने से सदा मनाते रहते हो। वो भी पहले जलाते हैं फिर मनाते हैं, भक्त लोग भी ऐसे ही करते हैं, जलाते भी हैं फिर इस बाद में मनाते हैं। और उनों के मनाने आपके आपका मनाना और उनों के मनाने में रात दिन का अंतर है। वो सब स्थूल करते हैं और हम सूक्ष्म करते हैं, वो बॉडी कॉन्शियस हैं और आप आत्म अभिमानी हैं, सोल कॉन्शियस हो, वो देह भान में और आप आत्मिक भान में। आपको बाप दादा का डायरेक्शन है, क्या डायरेक्शन है? होली अर्थात बीती सो बीती। होली पर क्या करना है? जो पास है, जो हो गया सो हो गया, बीती सो बीती, होली होली, जो बीत गया वो बीत गया, उसको याद मत करो। अर्थात बीती सो बीती, ये भी कहते हो ना कि होली, लेकिन अर्थ को प्रैक्टिकल में नहीं ला सकते हैं। आप सब होली अर्थात बीती सो बीती करते हो, वो लोग भी होली कहते हैं लेकिन बीती को बीती नहीं करते। आप होली अर्थात बीती को बीती करते हो ना, पुरानी बातें सब भूल जाते हैं या नहीं भूल जाते? बीती को बीती करते हो ना, या कभी कभी करते हो? फिर उसमें भी कभी कभी, कभी नहीं भी कभी करते हैं, क्योंकि बीती को याद करने से क्या होता है? अब पुरानी बातें, 10 साल पुरानी, 20 साल पुरानी बातें आप याद करो, क्या होता उससे? वो तो बात तो पूरी हो गई, बात तो वो वापस नहीं आएगी। बाबा कई बार की समझाते हैं ना कि वो बात बड़ी अकलमंद है, वो बात फिर से उस कल्प में नहीं आएगी, लेकिन हम उस बात को पकड़ के रख देते हैं। क्योंकि बीती को याद करने से क्या होता है, व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं, समय भी व्यर्थ जाता है। अभी बीती को याद करेंगे तो व्यर्थ संकल्प चलेंगे, तो उसमें समय कितना वेस्ट होता है। जो बहुत समय के संस्कार हैं, वो न चाहते भी जब चलते हैं तो इस संगम युग का एक एक मिनट, जो एक जन्म में 21 जन्मों की प्रारब्ध बनाता है, वो एक एक संकल्प, एक एक मिनट कितना वैल्यूबल है। इतने जन्मों की प्रारब्ध बनाता है हमारा एक एक संकल्प, एक एक मिनट, अब उसको कितना वेस्ट किया व्यर्थ संकल्प करके। कितना वैल्यूबल है, एक सेकंड नहीं गया व्यर्थ संकल्प करके, वो एक सेकंड नहीं गया, लेकिन अनेक जन्मों की प्रारब्ध में फर्क पड़ गया। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि संगम समय का समय और संकल्प कभी भी व्यर्थ नहीं गवाना है। इसलिए बाबा उसकी युक्तियां भी बताते हैं, जब ऐसे कोई व्यर्थ संकल्प चलता है तो एक सेकंड में स्टॉप, बिंदी लगा दो, फुल स्टॉप, तो देखो वो संकल्प खत्म हो जाएगा। तो कितना तो ये व्यर्थ नहीं गवाना है, न समय न संकल्प। अगर सदा प्रभु रंग में रंगे हुए हो, अर्थात बाप को सदा का साथी बना के रहते हो, तो संगम युग के एक एक संकल्प और समय माना एक एक मिनट को सफल कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं एक एक मिनट को सफल? पाप के संग के रंग में रहने से। तो चेक करो और अपने को चेक करो, अपने को कि एक एक मिनट, एक एक संकल्प सफल होता है या व्यर्थ भी जाता है? क्योंकि ये एक मिनट नहीं व्यर्थ गया, वो एक मिनट क्या है, 21 जन्मों का कनेक्शन है उस एक मिनट का, 21 जन्मों का कनेक्शन हर मिनट और हर संकल्प का है। इतना ध्यान देना है, एक सेकंड की बात नहीं, एक मिनट की बात नहीं, लेकिन 21 जन्म का कनेक्शन हर मिनट और हर संकल्प का है, इतनी वैल्यू है। तो अपने दिल में सोचो कि इतनी वैल्यू सदा रहती है हमारे हर संकल्प की, हमारे हर घड़ी की। इस संगम के समय के लिए कहा हुआ है, क्या कहा हुआ इस संगम के समय के लिए? अब नहीं तो कभी नहीं, अब नहीं तो कब नहीं। इतनी वैल्यू सदा स्मृति में रहे। तो आप सभी ने आज होली मनाई, अर्थात सदा बाप के संग का रंग लगाया, तो सारा दिन चेक किया कि बाप का रंग लगा हुआ रहा? बाबा तो शाम को आते हैं, तो सुबह खेलते हैं ना, तो बाबा पूछते हैं, सारा दिन चेक किया कि बाप का रंग लगा हुआ रहा? परमात्म संग में रहे या और भी कहां समय व संकल्प गया? चेक किया? कांधे लाओ, बाबा बार बार हाथ नहीं उठाते उठवाते हैं, कहेंगे बाबा कहते कांधे लाओ सिरे लाओ कि परमात्म संग में रहे या और भी कहां समय व संकल्प गया, चेक किया कांधे लाओ हाथ नहीं, ऐसे करो बाबा ने ऐसे सिर किया ऐसे करो। बाप दादा सदा ही इशारा देते हैं कि अपने मन के शुभ सतोगुणी संकल्प द्वारा प्रकृति को भी सतोगुणी बनाते रहो। जो हमारे संकल्प चलेंगे वो वातावरण में फैलते हैं, तो बाबा कहते हैं कि प्रकृति को भी सतोगुणी बनाते रहो तो वो मनसा सेवा याद रहती है, क्योंकि अभी प्रकृति बड़े रूप से अपना कार्य करने वाली है। हाँ, वो बड़े रूप से प्रकृति अपना कार्य करने वाली है। ये तो छोटी सी बात थी, जो जापान में भूकंप आया, फिर उसके बाद सुनामी आई, फिर आग लगी, हाँ तो रिएक्टर फटा और वो रेडियो एक्टिविटी उससे निकली। बाबा कहते ये तो छोटी सी बात है, लेकिन प्रकृति को मनुष्य आत्मा ही तंग करती है, प्रकृति में इंटरफेयर कर रही है ना मनुष्य आत्माएं, क्या क्या करते रहते हैं, तो प्रकृति को मनुष्य आत्मा ही तंग करती है तो वो भी तंग करना शुरू करती है। प्रकृति को तंग करेंगे तो प्रकृति भी तंग करेगी। इसलिए बाप कहते हैं जैसे माया जीत बनने का अटेंशन रखते हो, हाँ रखते हो ना, माया जीत बनना है या टेंशन रखते हो ना, तो माया से वायदा है, आपका काम है आना और हमारा काम है विजय प्राप्त करना। माया को कहते हो आप आओ, अच्छा आओ आप आएंगे पर हम आप पर विजय पाएंगे, और हमारा काम है विजय प्राप्त करना। किया है ना वायदा, अभी से किया है ना वायदा सभी ने कि माया का काम है आना और हमारा वायदा है हमको माया पर जीत पाना है, माया जीत बनना है ना, ऐसे ही प्रकृति जीत भी बनना है, क्योंकि आपको राज्य करना है ना, आपका राज्य आ रहा है ना, नशा है ना हमारा राज्य आ रहा है। लोग तो बेचारे सोचते हैं क्या होगा, डरते हैं, लेकिन आपको पता है क्या होगा, क्या होगा बाबा कहते आपको पता है कि हमारा राज्य आना है। तो अभी संगम युग अमृत वेला चल रहा है, सारे कल्प का संगम युग जो है ये अमृत वेला है, तो अमृत वेले के बाद क्या आता है, सवेरा, उस सवेरे में ही हमारा राज्य आना है ना नशा, हमारा राज्य है या केवल महारथियों के लिए राज्य है, महारथी सब दादियां आगे बैठी थी तो उनके लिए राज्य है, वही महाराजा महारानी बनेंगे या हमारे लिए भी राज्य है, आप सबका राज्य है ना, आपको चिंता नहीं, आपको चिंता नहीं क्या होगी, आपको चिंता नहीं क्या होगी, आपको चिंता नहीं क्या होगा, हमको चिंता तो नहीं है ना क्या होगा, दुनिया वाले तो चिंता कर रहे पता नहीं क्या होगा क्या होगा क्या होगा, हमको चिंता नहीं है क्योंकि हमको क्या नशा है कि हमारा राज्य आने वाला है, तो चिंता नहीं करते। आपको चिंता नहीं क्या होगा, अच्छे ते अच्छा होगा, तो आपके राज्य में प्रकृति भी सतो प्रधान होनी है, तो प्रकृति को तमोगुणी से सतोगुणी कौन बनाएगा, या प्रकृति जैसी भी हो चलेगी, जैसे अभी प्रकृति है वैसे ही चलेगी, हाँ सतयुग में भी ऐसे ही चलेगी, यही समझते हो क्या, आपके राज्य में चलेगा प्रकृति जो तमो प्रधान है वो आपके राज्य में चलेगा, ऐसे चलेगा, हाँ करो या ना करो ये प्रकृति ऐसे चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी, तो प्रकृति को सतोगुणी कौन बनाएगा, आप ही बनाएंगे ना, इसलिए अभी अचानक का पहला दृश्य, छोटा सा दृश्य शुरू हुआ, वो जापान का जो भूकंप और सुनामी, ये पहला दृश्य, छोटा सा दृश्य शुरू हुआ। अभी तो बड़े बड़े आने हैं और अचानक ही आने हैं। अभी बाबा अचानक का पाठ पढ़ा रहे, अचानक ही आने हैं। जो सोच में भी नहीं होगा वही होना है। बाबा बार बार कहते हैं, हाँ मुंबई को बाबा क्या कहते हैं, वो तो जाएगी पानी में, हाँ जानकी बहन जाएगी ना पानी में, मुंबई जाएगी। जो सोच में भी नहीं होगा वही होना है। बाप दादा ने तो बहुत समय से अचानक का पाठ पढ़ाया है, लेकिन अभी प्रत्यक्ष रूप में देख करके अभी अपना काम शुरू करो। आपका काम क्या है, प्रकृति को भी सतो प्रधान बनाना है, तो अपना काम शुरू करो। घबराओ नहीं, क्या होगा क्या होगा, घबराओ नहीं। कहानी सुनाते हैं ना, कौन सी कहानी है, ये कहानी है महाभारत की, जिसमें लाखा भवन में पांडव रहते थे, लेकिन वो लाखा था, लाख माना वो जो मोम का वो महल था, और उनको पता था ये कौरव क्या करेंगे, इस महल को तो जलाएंगे। वो मोम का महल था, अब उसमें रहे जरूर, लेकिन नीचे से सुरंग बना ली, ऐसी सुरंग बना ली जो कौरवों को बिल्कुल पता ही नहीं चला, और उनको मालूम था अभी ये आग लगाएंगे, तो उस सुरंग से भाग गए। और वो आग लगी मोम के उस महल को, लेकिन पांडव तो बच गए थे, वो तो भाग गए थे, इसलिए उनको तो कुछ भी नहीं हुआ। तो कहानी सुनाते हैं ना, चारों ओर आग लगी लेकिन परमात्मा के बच्चे सेफ रहे, पांडव सेफ रहे। तो अभी भी बच्चे तो सेफ है ना, बस जापान में बाबा के सब बच्चे सेफ थे। पेपर तो आने ही हैं, लेकिन आपका डबल काम है, एक तो निर्भय होके सामना करो, दूसरा एक तो निर्भय होकर सामना करो, दूसरा अपने भक्त और अपने दुखी भाई बहनों की सेवा भी कौन करेगा, सेवा भी तो आप ही करेंगे ना। आप प्रभु के संग में रंग लगे हुए हो, तो जो परमात्मा के संग के रंग में प्राप्त किया है, वो अपने भाई बहनों को, भक्तों को खूब प्यार से, दिल से बांटो। दुख के समय कौन याद आता है, दुख के समय कौन याद आता है, हाँ परमात्मा याद आता है ना दुख के समय। फिर भी परमात्मा चाहे समझे या नहीं समझे, दुनिया वाले भले उसको परमात्मा नहीं भी समझे, कोई नहीं भी मानते हैं परमात्मा को, फिर भी परमात्मा चाहे समझे चाहे न समझे, लेकिन मजबूरी से भी हे बाप हे परमात्मा कहेंगे जरूर। न मानने वाले भी कहेंगे ना हे ईश्वर, है ना, इसको चुटकुला सुनाते हैं। कोई नास्तिक प्रोफेसर था, उसने क्लास में बताया परमात्मा है ही नहीं, परमात्मा है ही नहीं, और कई प्रमाण दिए परमात्मा है ही नहीं। तो एक तो फिर एक स्टूडेंट खड़ा हुआ और उसने कहा कि परमात्मा है ही नहीं, तो उसने और उसको प्रमाण किया कि परमात्मा है ही नहीं। तो उसी समय उस प्रोफेसर ने कहा थैंक गॉड, भगवान का शुक्र है कि मैं प्रमाणित कर सका कि भगवान नहीं है। अब किसका शुक्र किया, परमात्मा का ही शुक्र किया कि परमात्मा नहीं है। तो ऐसे भी है, तो अनजाने में भी परमात्मा कहते भी हैं, याद करते हैं, ओ गॉड हे परमात्मा हे ईश्वर। तो हे परमात्मा कहेंगे जरूर मजबूरी से भी। तो आप परमात्म बच्चों को अभी दुखियों का सहारा बनना है, उन्हों को शुभ भावना शुभ कामना द्वारा, बाप द्वारा प्राप्त हुई किरणों द्वारा सहारा बनो। फिर भी आपका परिवार है ना, तो परिवार में एक दो को सहयोग देते हैं ना, तो नाम ही है सहयोग। सहयोग, सहयोग माना सहयोग, श्रेष्ठ योग। वही साधन है सहारा देने का। संदेश भी भेजा था कि समय फिक्स करो, बाबा ने संदेश भेजा था संदेशी द्वारा कि समय फिक्स करो, ऐसे नहीं हो जाएगा। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल अमृत वेला निश्चित है तो करते हो ना, ऐसे अपने कार्य प्रमाण ये मनसा सेवा भी अभी के समय प्रमाण अति आवश्यक है, उसका भी समय फिक्स करो मनसा सेवा करने का, वो समय प्रमाण अति आवश्यक है। तो समय निकालो, रहम दिल बनो, कल्याणकारी बनो। आपका स्वमान क्या है? बाबा ने हमें कौन सा टाइटल दिया है? आपका स्वमान है विश्व कल्याणकारी। तो रहम आता है ना, या हो जाएगा अपने आप विश्व कल्याण? आप नहीं, आपका भी तो उसमें सहयोग चाहिए कि हो जाएगा। इसमें अलबेले नहीं बनना, क्योंकि जिनों को आप सकाश देंगे वही आपके भक्त बनेंगे। इसलिए क्या करना है? है अटेंशन इतना। जो समझते हैं हमारा अटेंशन है और बढ़ेगा वो हाथ उठाओ, मनसा सेवा करेंगे, अटेंशन बढ़ेगा, सकाश देंगे या देते हैं, हाथ उठाओ। नीचे ऊपर कर रहे हैं, हाँ ऊपर कर रहे हैं, फिर नीचे कर रहे हैं, ऊपर कर रहे हैं, नीचे कर रहे हैं, तो नीचे ऊपर कर रहे हैं। यहाँ देखने आ रहा है, बाबा के सामने भी बड़ा टेलीविजन स्क्रीन था, तो बाबा ने कहा यहाँ भी देखने आ रहा है, ऊपर कर रहे हैं, नीचे कर रहे हैं। अगर इतने सभी ने अपने स्वमान को प्रैक्टिकल में लाया तो आत्माएं अभी भी संगम पर आपके दिल से गीत गाएंगे। भविष्य में तो गाएंगे भक्ति मार्ग में, परंतु संगम पर भी आपके दिल से गीत गाएंगे, वाह परमात्म बच्चे वाह, हमें सहारा दिया। मनसा सेवा करेंगे उनकी तो सहारा मिलेगा, उनको अनुभव होगा, तो कहेंगे वाह परमात्म बच्चे वाह, हमें सहारा दिया। हाँ कई आते हैं, फोन भी करते हैं, हाँ बहन जी हमारा फलाने को ये प्रॉब्लम है, आप सकाश देना, आप सकाश देना, ऐसे कहते रहते हैं। तो वाह परमात्म बच्चे वाह, हमें सहारा दिया। अभी का सहारा आधा कल्प आपके गीत गाते रहेंगे, आप उसके पूर्वज हो जाएंगे। पूर्वज हो, झाड़ में कहाँ बैठे हैं ब्राह्मण? नीचे बैठे हैं ना, जड़ों में बैठे हैं, तो पूर्वज है ना सारे झाड़ के, नीचे बैठे हैं ना पेड़ के, ये जो कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं, तो पूर्वज हो ना। आवाज सुनने आता है भक्तों का, थोड़ा अपने को सावधान करो। दुखियों का सहारा बनना ही है तो आवाज सुनने आएगा। अगर ये सचमुच समझेंगे कि हमको दुखियों का सहारा बनना है तो वो आवाज सुनने आएगा। तो सभी ने होली तो मनाई, आपकी तो सारा संगम योगी होली है, परमात्मा के संग के रंग में ही रहते हो। यादगार मनाते हैं एक दो दिन, होली का जलाई एक दिन फिर दूसरे दिन मनाई, तो वो एक दो दिन ही यादगार मनाते हैं, लेकिन आप तो पूरा संगम प्रभु के संग में रहने वाले हो। नशा है ना, लोग बिचारे मांगते रहते हैं कि हे प्रभु ये कर दो वो कर दो, लेकिन आपको 21 जन्मों की गारंटी मिली है कि सब कुछ आपको प्राप्त होगा, इच्छा मात्रम अविद्या होंगे, तो 21 जन्मों की गारंटी मिली है। कभी दुख का स्वप्न में भी कोई दृश्य नहीं आएगा, सतयुग में स्वप्न में भी कोई दुख का दृश्य नहीं आएगा। नहीं तो दुख के दृश्य भी आते ना, भले वो उस समय न भी हो, लेकिन स्वप्न में आ जाते हैं तो कितना दुख महसूस होता है। तो सतयुग में स्वप्न में भी कोई ऐसा दुख का दृश्य नहीं आएगा। संकल्प में भी दुख की लहर नहीं आएगी, तो सदा हर एक को अगर राज्य लेना है तो क्या करना होगा? तो अभी अपने परिवार, सतयुग के साथी और रॉयल प्रजा, साधारण प्रजा सब अभी बना सकते हो। अपने ब्राह्मणों में से ही तो बनेगी ना, राजा ही भी वही आप में से ही कोई लेंगे, प्रजा भी आप में से ही कोई बनेगा। तो बाबा कहते हैं, उनको बाबा कहते हैं सबको सबको अभी बना लो, उनको सकाश दे करके, तो वो आपके भक्त भी बन जाएंगे, प्रजा भी बन जाएगी। 21 जन्मों की गारंटी है। थोड़ी सी सेवा करो, समय निकालो, क्योंकि आपके पास संकल्प शक्ति तो है ही। सिर्फ जो बाप से मिला है वो अपने भाई बहनों को भी बांटो। बाप दादा ने पहले भी कहा था कि सदा ये चेक करो कि मुझे ब्राह्मण परिवार के बीच संस्कार मिलन की रास करना आता है। ये पूछो, सब ब्राह्मणों के बीच में मुझे संस्कार मिलन की रास करना आता है? बाप दादा ने कहा था ये रास कब करेंगे उसकी डेट भी फिक्स करो। संस्कार मिलन की रास, कैसा भी वो व्यक्ति है तो भी उनके साथ हमारे संस्कार मिलने चाहिए, क्योंकि यही साथी बनेंगे सतयुग के। तो अगर अभी संस्कार नहीं मिलाएंगे तो फिर कैसे वो साथी बनाएंगे? तो बाप दादा ने कहा था वो रास कब करेंगे उसकी डेट भी फिक्स करो। फिक्स हो सकती है सबके साथ संस्कार मिलन की रेस में, वो फिक्स हो सकती है डेट की, हम इस दिन सबके साथ हमारा संस्कार मिलन है, तो फिक्स हो सकती है डेट? पहली लाइन बताओ। अब सब बैठे हैं आगे वाले, तो पहली लाइन बताओ, हाथ उठाओ, हो सकती है? पांडव भी उठाओ, पांडवों के बिना तो गति नहीं है। हाँ भाई उठाओ, संस्कार मिलन की रास हो सकती है? अभी आज से शुरू करना, किसी से आपकी बनती नहीं है ना, तो उनको आप सकाश दो, अच्छे वाइब्रेशन दो, उसके प्रति शुभ सोचो, आप पॉजिटिव सोचो, तो धीरे धीरे वो जो थोड़ा मन मुटाव है वो खत्म हो जाएगा और आप मिल जाएंगे। पर नेगेटिव सोचेंगे तो और ही दूर हो जाएंगे, पर पॉजिटिव सोचो, उसकी अच्छी अच्छाइयां सोचो, तो आप अच्छाई उनकी सोचेंगे तो अवश्य उनके निकट आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? तो बाबा कहते हैं अच्छा, तो अभी लास्ट टर्न है, तो इस उस सीजन का लास्ट टर्न होगा 16 मार्च या लास्ट टर्न है, तो अभी लास्ट टर्न है, एक टर्न रहा हुआ है, ये सेकंड लास्ट था, तो एक टर्न और रहा हुआ है, उसमें हरेक अपने लिए क्या दृढ़ संकल्प करेंगे वो फिक्स करके लिखना। कितना समय लगेगा, जो ब्राह्मण परिवार में कहां भी कभी भी संस्कार अपना कार्य नहीं करे, संस्कारों का टक्कर न हो, संस्कार मिलन हो, तो अपना वो पुराना संस्कार कार्य न करे, वो बाबा कहते डेट फिक्स करो। चाहे मेरा संस्कार चाहे दूसरे का संस्कार भी मेरे को प्रभाव नहीं डाले। कैसे डालता है प्रभाव, कैसे पता चलता है उसका वो पूरा वो संस्कार मेरे को प्रभावित कर रहा है? वो जैसे सामने आएगा ना मैं मुंह फेर दूंगा, या कहूंगा मैं इसके सामने भी नहीं जाऊंगा, माना ये संस्कार का टक्कर है, इसलिए टक्कर से बचना चाहते हैं तो उनके नजदीक भी नहीं जाना चाहते। तो बाबा कहते हैं अच्छा, तो मेरे को प्रभाव नहीं डाले, ये डेट फिक्स हो सकती है? हो सकती है। फिर बाबा ने हाथ उठवाया, वो भाई फिर से हाथ उठाओ कि संस्कार का टक्कर नहीं होगा, संस्कार मिलन होगा। अच्छा, सभी का फोटो निकाला, वीडियो वालों को बोला सभी का फोटो निकाला, क्योंकि जैसे ये अचानक सीन देखी ना, बहुत बड़ी न्यूज बन गई थी उस समय, कितना लोग डर गए थे कि अचानक अगर बारिश हुई, अचानक आंधी आई तो क्या होगा, पूरी दुनिया में ये रेडियो एक्टिविटी फैलेगी। तो जापान में भूकंप और सुनामी आई है जिसमें बहुत नुकसान हुआ है, तो ये ब्रैकेट में है। तो इसके लिए बाबा ने कहा ये अचानक सीन देखी ना, ऐसे सब अचानक ही होना है, इसलिए बाप दादा तैयारी तो देखेंगे ना। जब दूसरों को शुभ भावना शुभ कामना देते हो, बाप दादा ने देखा ये दूसरों की सेवा का प्रोग्राम भी बनाया था, तो अगर हर आत्मा के प्रति सदा शुभ भावना और शुभ कामना रखो, नंबर वार तो होना ही है, बाबा जानते हैं शुभ भावना शुभ कामना भी नंबर वारी होगी, आपकी यादगार माला में सब एक नंबर है क्या? 108 तक ही नंबर है, तो एक नंबर तो सब नहीं है, नंबर है क्या, नंबर वार है ना, लेकिन माला में तो पिरोए है ना, नंबर क्यों मिला, नंबर क्यों मिला उनको, भिन्न भिन्न संस्कार है, तो पहला नंबर और आखिरी नंबर 108, संस्कार में तो अंतर ही है ना, भिन्न भिन्न संस्कार है, लेकिन हमको संस्कार देखने के बजाय शुभ भावना शुभ कामना रखनी है, उनका वो संस्कार नहीं देखना है, शुभ भावना शुभ कामना रखनी है। आखिर है तो ब्राह्मण परिवार के ही ना, कैसा भी है परिवार तो मेरा है ना, उसने भी बाबा को पहचाना है, अपने आप को आत्मा समझते हैं, मुझे बदलना है ये भी उनकी बुद्धि में है, तो परिवार तो अपना ही है ना। जैसे मेरा बाबा कहते हो वैसे मेरा परिवार भी है, मेरा बाबा तो है लेकिन मेरा परिवार भी है, तो अच्छा है मेजॉरिटी ने हाथ उठाया है, तो सभी का उमंग उत्साह है तब तो हाथ उठाया है ना, तो एक दो के सहयोगी बन शुभ भावना शुभ कामना की दृष्टि वृत्ति स्मृति रखने से ये रास होना कोई बड़ी बात नहीं, संस्कार मिलन की रास होना कोई बड़ी बात नहीं। इस पर जो बहुत अच्छा नंबर लेगा, डेट पर प्रैक्टिकल करके दिखाएगा, उनको न्यारा और प्यारा इनाम मिलेगा, बाबा इनाम देंगे, इनाम अभी नहीं बताएंगे लेकिन बाप दादा इनाम देंगे, क्यों, सेवा करने का टाइम निकालना है ना, सकाश देने का टाइम निकालना है ना, तो ये संस्कार की खिटखिट समय अपने तरफ खींच लेती है, हाँ ये जो संस्कार की खिटखिट समय अपने तरफ खींच लेती है, इसलिए समय की अभी आवश्यकता है, ठीक है ना, समय की आवश्यकता है, वेस्ट नहीं करो, सकाश देने में समय लगाओ, व्यर्थ संकल्प नहीं करो। ये सभी मधुबन वाले हैं ना, अब नीचे शांतिवन में जो डिपार्टमेंट्स के हैं भाई बैठे हैं, तो सब आगे बाबा उनको देख रहे हैं, आगे बैठने वालों को देख बाबा बोले, पसंद है ना, मधुबन वाले बैठते हैं तो पसंद है ना, क्योंकि मधुबन वासी विशेष हैं, बाप दादा का भी मधुबन निवासियों के प्रति दिल का प्यार है और मधुबन वालों का भी है, ये भी बाबा कहते हैं बाप से प्यार है और रहेगा, मिट नहीं सकता, अमर है ना इसमें, तब तो मधुबन वासी बने हो, बाबा से इतना प्यार है तब तो मधुबन वासी बने हो। कहाँ भी मधुबन वासी जाते हैं तो किस रिगार्ड से देखते हैं, मधुबन निवासी आते हैं आपके सेंटरों पर तो किस रिगार्ड से आप देखते हो, ये मधुबन का है, ये मधुबन का है, इसलिए ये अटेंशन रखना, लास्ट टर्न के पहले सभी मधुबन में कोई स्थान मुकरर कर जहां अपनी चिटकी डालें, हाँ कि अभी संस्कार मिलन हमारा हो गया है, अभी कोई भी मन मुटाव नहीं, कोई संस्कार का टक्कर नहीं, लेकिन लास्ट टर्न से पहले सभी ने होली मनाई, आपकी तो रोज होली है, अभी भी ये तो बाहर का थोड़ा मनाना होता है, कहाँ मनाने जाएं, यहाँ ही मनाएंगे। तो अभी जब होली आती है तो हम लोग ओम शांति भवन में ही मनाते हैं, थोड़ा बहुत पिचकारी डालते हैं, होली खेलते हैं, मनाते हैं, लेकिन उनको हम वार्निंग देते हैं, हम कहते हैं ये ओम शांति भवन के बाहर नहीं करना कुछ, नहीं तो बाहर जा करके पता नहीं क्या क्या रंग डालते हैं, क्या नहीं करते, दुनिया में तो करते हैं लेकिन ओम शांति भवन के अंदर ही करना है। दादी जी बहुत स्ट्रिक्ट थे, कभी भी मधुबन के अंदर, पांडव भवन के अंदर कहीं कुछ ऐसे किसी को रंग डालने की परमिशन नहीं देती थी, बिल्कुल नहीं। अगर किसी ने डाला तो दादी उनको बुला लेती थी, ये तुमने क्यों किया, परमिशन दी बाबा ने, नहीं तो क्यों किया, माना परमिशन का उल्लंघन किया ना। तो बहुत सब बाबा दादी बहुत स्ट्रिक्ट होती थी। तो बाबा कहते हैं अभी तो ये तो बाहर का थोड़ा मनाना हुआ, कहाँ मनाने जाएं, यहाँ ही मनाएंगे, तो चलो ओम शांति भवन में मना लेते हैं। लेकिन वो हुई रीति रसम, तो सभी चारों ओर के बाप दादा के अति स्नेही अति प्यारे, लाडले सिक्की लदे स्वमान धारी, हर बच्चे को बाप दादा पदम गुणा याद प्यार भी दे रहे हैं और दिल का दुलार भी दे रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं चारों ओर, सब सुन के देख के हर्षित हो रहे हैं। अच्छा आज पहली बार कौन आए हैं, उठो, ये सभी पहली बार आए हैं, बहुत आए होंगे। अच्छा पहली बार मधुबन निवासी बनने का भाग्य प्राप्त हुआ, मधुबन में पहली बार आए हैं। सभी आपके भाई बहने और बाप दादा भी आप सभी को पहली बार आने वालों को मुबारक दे रहे हैं। अभी बाप दादा देखेंगे, क्योंकि चांस है कि थोड़ी देर से आए हो, लेकिन जो चाहे वो अभी भी लास्ट सो फास्ट जाकर के फर्स्ट नंबर लेकर फर्स्ट डिवीजन में आ सकते हो, भले लेट आए हो। ये बाप दादा का जो भी आज आए हैं उन सभी बच्चों को वरदान है, कौन सा, लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट। सिर्फ जो बाप के महावाक्य हैं उस श्रीमत पर चलते रहेंगे तो श्रीमत आपको श्रेष्ठ डिवीजन में ला सकती है, लाएगी। इतने सारे परिवार द्वारा आप सभी को वरदान तो बाप का होता है, लेकिन शुभ भावना शुभ कामना है कि आप जितना आगे बढ़ना चाहो उतना बढ़ सकते हो। पहली बार आने वालों को बाबा ने ये वरदान दिया। सभी आपको दिल से दुआएं देंगे, जहाँ भी क्लास में आते हो वहाँ आपको दुआएं मिलती रहेगी और वो दुआएं आपको तीव्र पुरुषार्थी बना के आगे बढ़ाएगी, ये निश्चय रखो। अच्छा बाप दादा सभी से बहुत बढ़िया सुंदर गुड नाइट कर रहे हैं। अच्छा ओम शांति ओम शांति। हाँ मीठे मीठे अब याद प्यार स्वीकार करना, टाइम हो गया है। अच्छा वरदान, हर संकल्प और कर्म में सिद्धि अर्थात सफलता प्राप्त करने वाले संपूर्ण मूरत भव। हर संकल्प और कर्म में सिद्धि अर्थात सफलता प्राप्त करने वाले संपूर्ण मूरत भव। संकल्पों की सिद्धि तब प्राप्त होगी जब समर्थ संकल्पों की रचना करेंगे, तब उनकी सिद्धि प्राप्त होगी। जो अधिक संकल्पों की रचना करते हैं वो उनकी पालना नहीं कर पाते, इसलिए जितनी रचना ज्यादा उतनी शक्तिहीन होती है। अब बच्चे भी बहुत ज्यादा पैदा कर लेते हैं तो अपने बच्चों को कहाँ पालना ठीक दे सकते हैं, तो संकल्प भी बहुत ज्यादा ज्यादा रच लेते हैं उसमें व्यर्थ बहुत, तो फिर उसकी पालना तो कर नहीं पाते, तो समय स्वास्थ्य संकल्प सब बर्बाद। तो बाबा कहते हैं इसलिए जितनी रचना ज्यादा उतनी शक्तिहीन होती है, तो पहले व्यर्थ रचना बंद करो, तब सफलता प्राप्त होगी। और कर्मों में सफलता प्राप्त करने की युक्ति है ये संकल्पों में सफलता। फिर कर्मों में सफलता प्राप्त करने की युक्ति है कर्म करने से पहले आदि मध्य अंत को जानकर फिर कर्म करो, इससे ही संपूर्ण मूरत बन जाएंगे। स्लोगन, समय पर दुख और धोखे से बचकर सफल होने वाले ही ज्ञानी समझदार हैं। समय पर दुख और धोखे से बचकर सफल होने वाला ही ज्ञानी यानी समझदार है। यह व्यक्ति सारे अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो के अंतर्गत आप होली हंस बच्चों का आहार भी शुद्ध, व्यवहार भी शुद्ध, अशुद्धि का नाम निशान भी न हो, क्योंकि शुद्ध दुनिया में जा रहे हो। जहाँ अपवित्रता का व अशुद्धि का नाम निशान नहीं है, जब ऐसे होली हंस बनते हो तब भविष्य में हिज होलीनेस कहलाते हो। अच्छा, आज संडे है, तीसरा रविवार महीने का, तो विशेष सूचना है मास के तीसरे रविवार का योग अभ्यास आज शाम को 6:30 बजे से मेडिटेशन हॉल में रहेगा। आज मास का तीसरा रविवार है, सभी भाई बहने संगठित रूप में एकत्रित होकर सायंकाल 6:30 से 7:30 फिर 8 बजे तक अपने परम पवित्र स्वरूप में स्थित हो पवित्रता की दिव्य किरणें फैलाते हुए सर्व आत्माओं को पवित्र बनो योगी बनो की शुभ प्रेरणाएं सकाश रूप में देने की सेवा करें। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी हमारे सामने एक छोटा बच्चा, परसों भी इसने गाया था।